ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ?
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਤ ਪਾਓਗੇ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 416-740-3262।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ 416-740-3262। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ।
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800।
चलो कहीं दूर ये समा छोड़ के।
अरे भाई कहाँ चल दिए?
लराची बाई नोमान एजाज, जहाँ मिलेंगे आपको पाकिस्तानी ऑथेंटिक लाहौरी खाने।
सच?
जी हाँ, गोल गप्पे, पापड़ी चाट से लेकर बारबेक्यू आइटम्स, बिरयानी, लाहौरी चिकन और गोट कढ़ाई, बीफ नेहारी, चना मसाला और हलीम।
और बच्चों के लिए?
बच्चों के लिए चिकन सैंडविचेस, चिकन विंग्स, बीफ बर्गर और फ्राइज।
और मीठे में क्या होगा?
हाँ, पिस्ता आइसक्रीम, लाहौरी कुल्फी फालूदा, रबड़ी, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा।
कहाँ है ये लराची बाई नोमान एजाज?
10220 डेरी रोड, मिल्टन। रिजर्वेशन या ऑर्डर के लिए कॉल करें 3658778252।
पिंकी, बबलू, चलो हम भी चलते हैं।
ओके जी, वी आर बैक। अच्छा फियाज भाई, एक बहुत ही आपकी ये जो बात थी कि जी ये बिल्कुल हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं, तो ये भी हमने बल्कि खबर दी है कि यहाँ पे बीजेपी के ना तो राज्यसभा में ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम इनके कैंडिडेट्स या के जो हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नजर आ रहे हैं अभी, बल्कि राज्यसभा के अंदर जो इनके 3 एमपीज हैं, एक तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, सैयद जफर इस्लाम और एमजे अकबर हैं, इनकी भी टर्म्स जो हैं जून के एंड और जुलाई के मिड तक खत्म हो रही हैं, और कोई भी अब इनका जो है मुस्लिम नहीं है इनकी पार्टी में। तो ये अब क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या ये सेक्युलर इंडिया का मैसेज अभी भी जा रहा है या नहीं जा रहा? क्या जा रहा है?
नहीं, वो पिछले तो जो बन गए, अभी जो इलेक्शन हुआ है पीछे इनका
यूपी के अंदर जो हुआ था, जी जी जी,
एक मुस्लिम को भी इन्होंने टिकट नहीं दिया
जी,
बीजेपी ने।
हुँ,
तो वो उनकी इंटेंशन तो क्लियर है, वो तो बिल्कुल उन्होंने जो पहले कहीं उनके बड़ों ने दे दिए, अब आइंदा वो कोई तवक्को ना रखेंगे, वो मुस्लिम्स को टिकट देंगे। और वहां मुस्लिम्स ने रिएक्ट भी किया है, मुस्लिम वोटर ने अपनी तरफ से उन्होंने जो कर सकते थे वो किया है और उसका वोट उनके अगेंस्ट गया है और नजर भी आया है। लेकिन बात यह है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब तक है उस वक्त तक तो आप कोई खैर की तवक्को ना रखें। कल तक ये नहीं होगी तो फिर शायद कोई बेहतरी के चांसेस हों, और हम अभी तक तो हम मजम्मत ही कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, कहते हैं कि अपने नेबर के लिए भी खैर की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वहां उनकी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन लोग रहते हैं, बीजेपी अमित शाह या उनके 2-4-6 जो लोग हैं वो ही नहीं है, हमारी हमदर्दियां वहां के लोगों के साथ हैं, अवाम के साथ हैं, चाहे उनका रिलीजन कोई भी है, और उन रिलीजन वालों में भी क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, बुद्ध मत हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। सिखों के साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, इसीलिए सिख जो है वो दुनिया भर में भागते फिरते हैं, जहां कहीं उन्हें सर छुपाने की जगह मिलती है वो वहां जा रहे हैं। तो हमें कोई नफरत नहीं है इंडिया से या इंडियंस के साथ, लेकिन जब वो गलत काम कर रहे हैं तो उस पर तनकीद करने का हमारा हक है, और वो तनकीद हम करते रहेंगे। अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ भी जरूर करेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके यहाँ से कभी भी कोई खैर की खबर नहीं आई।
अच्छा ये जो मोदी साहब हैं, मोदी जी जो हैं, ये बड़े क्लोज थे, समझा जाता है अलेजली, ये समझा जाता है कि जी ये नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज थे और बिना बुलाए भी लाहौर आ गए थे। तो अब नवाज शरीफ साहब के भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, तो अभी भी आपको नहीं लग रहा, क्योंकि इमरान खान को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ऑफकोर्स वी कुड अंडरस्टैंड, लेकिन क्या शहबाज शरीफ के साथ भी कोई आपको लग नहीं रहा है कि ताल्लुकात अच्छे चलेंगे? क्योंकि अभी जो मियां मंशा साहब का एक इंटरव्यू थोड़े दिन पहले आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हमको अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए और ट्रेड हमको फॉरेन ज्यादा शुरू करनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको?
अच्छा किया आप पाकिस्तान की सियासत की तरफ आ गए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान की सियासत की बात सुनना चाहते हैं और पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं। मोदी पे जितना तबर्रा भेज रहे हैं सुबह दोपहर शाम वो भेजते रहेंगे लोग, और हम फिर कहेंगे कि बायकॉट करें जितना बायकॉट कर सकते हैं। हम कोई हेट स्पीच नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और हर बंदे के गुस्से का इजहार करने का अपना तरीका होता है, और जितना मजम्मत हम करें इतनी कम है जो वो काम कर रहे हैं। और खुसूसन हमारे नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब वो गुस्ताखी करेंगे तो वो हमसे बर्दाश्त इसलिए नहीं होगा कि हमें कुरान में हुक्म है व अतीउल्लाह, अल्लाह की अतात करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की अतात करो, और अतात का पहला करीना अदब और एहतराम का होता है, और हम इंतहाई अदब करते हैं, इंतहाई एहतराम करते हैं अपने नबी का, अपने रसूल का, और जब उसमें कोई बंदा उसके अगेंस्ट चलेगा, उनका एहतराम नहीं करेगा, तो वो हमारे लिए इंतहाई जो है हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, और अगर वो गलत करेगा तो हम उसकी मजम्मत भी करेंगे, और हम उससे हम अपनी नफरत का इजहार भी करेंगे, अपने गुस्से का इजहार भी करेंगे। तो बात वहाँ इंडिया की खत्म करते हैं, आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं। शहबाज शरीफ साहब से आप क्या तवक्को करते हैं? एक तो बात ये मंशा साहब तो बड़े अरसे से बेचैन है इंडिया के साथ ताल्लुकात और इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए, और हमेशा जब नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हुई है, उन्होंने कोशिश भी की है, उन्होंने बिजनेसेस किए भी हैं, और इन्होंने भी, मियां बिरादरान ने भी की हैं, इनकी फैक्ट्रीज में इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन टेक्निकल्स और इंडियन लोग आके काम करते रहे हैं, वो सारा कुछ रहा है। अब भी वो बेचैन है, बेताब है, लेकिन मसला उनका ये है कि उनकी गवर्नमेंट ही इंतहाई कमजोर सी गवर्नमेंट है। उन्हें सुबह नहीं पता होता कि दोपहर तक मेरी गवर्नमेंट है या नहीं है, दोपहर गुजर जाए तो ये नहीं पता होता कि शाम तक तो मेरी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, और शाम खैर से गुजर जाए तो वो कहते हैं कल सुबह जब मैं उठूंगा तो पता नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूंगा या नहीं हूंगा। तो उनके तो हालात बहुत पतले हैं, उनके बहुत हालात खराब हैं। मंशा साहब ने गलत टाइम पे गलत बात की, स्पेशली इन हालात में जब उन्होंने कश्मीरियों पर वो जुल्म ढा रहे हैं, खसूसन इन हालात में जब वो हमारे नबी की जो है उसकी तौहीन कर रहे हैं, उनका एहतराम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं, ऐसे हालात में मंशा साहब ने ये बात करके मियां नवाज शरीफ साहब के साथ अपना उन्होंने जो खुबसे बातन था उसका इजहार तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन मियां साहब के साथ भी उन्होंने कोई नेकी नहीं की। पाकिस्तान के लोग इस वक्त गुस्से से भरे हुए हैं, ऐसे मौके पर उन्होंने ये बात करके मियां साहब को और नुकसान पहुंचाया है। मियां साहब की दूसरी जहां अपनी गवर्नमेंट की बात है, उनके गवर्नमेंट के हालात भी इंतहाई पतले हैं, और कोई पता नहीं ये 10 जून को जब बजट 10 या 11 को जब पेश करते हैं उसके बाद शायद घंटों के हिसाब से उनकी गवर्नमेंट रह जाएगी, और ये बजट इस तरह पेश होगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन वक्त में पेश होने वाला बजट है, क्योंकि एहसास है हमारे मुख्तदर हलकों को, जो हमारे पावरफुल इदारे हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि जितने इलेक्शन से हम दूर हो रहे हैं इतना ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन अभी अनाउंस हो जाए तो आप देख लीजिएगा कि हमारी स्टॉक मार्केट भी जो है नीचे जो जा रही है वो रुक जाएगी, और जो हमारा डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया नीचे जा रहा है उसकी मजीद कदर कम होना रुक जाएगी। ये नहीं कि स्टेबल हो जाएगी, ये नहीं कि बेहतर हो जाएगी, लेकिन जिस तेजी से रुपए की कदर गिर रही है वो रुक जाएगी। लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि हाँ अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, और इलेक्शन में लोग अपना फैसला देंगे, जिसकी भी कल गवर्नमेंट होगी देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर वो जिस तरह मर्जी है अपनी हुकूमत चलाए, जिस तरह मर्जी वो फैसले करे, और वही फैसले पाकिस्तान के फैसले होंगे। इस वक्त तो किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
अच्छा ये राणा सनाउल्लाह साहब ने पहले तो बड़ी अग्रेसिव टोन ली हुई थी कि हम आएंगे तो हम इनको बड़ी अच्छी तरह करेंगे और हम वेलकम कर रहे हैं, आए तो सही, जरा ये बनी गाला, ये जो इनकी हिफाजत पे लोग लगाए हुए थे वही अब इनको अरेस्ट करेंगे। आज उनकी बिल्कुल ही टोन बदली हुई थी। आज राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इमरान खान साहब को कह रहे हैं आओ बैठो हमारे साथ बात करो, नेक्स्ट इलेक्शन की बात करो। तो ये अब देखे ना, इमरान खान साहब को इल्जाम देते थे ये तुम यू टर्न खान हो, यू टर्न खान हो। शहबाज शरीफ आए, उन्होंने कहा जी तनख्वाहें बढ़ा दूंगा, यू टर्न ले लिया, फिर कहा जी ये छुट्टी खत्म करो सैटरडे की, फिर यू टर्न ले लिया, अब कह रहे हैं बड़ी सख्ती से पेश आएंगे, आज कह रहे हैं नहीं जी आओ हमारे साथ बैठो, तो ये कितने यू टर्न इन्होंने भी लेने हैं, जरा बताएं इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करें।
राना थनाउल्ला साहब ने जिस सख्ती से इन्होंने 25 तारीख को लोगों को जो इन्होंने सलूक लोगों के साथ रवा रखा, अब वो जो लोग आपने देखा होगा कि पिशावर से तो जो चले वो तो केपीके के लोग थे, केपीके वाले भी हमारे अपने भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, और उनके भी लोग जो है वो तमाम हसास इदारों में, तमाम अहम इदारों में, तमाम अहम पोस्टों पर उनके भी अजीज रिश्तेदार, उनके अंकल चचा मामू बैठे हुए हैं, और वहां के लोगों को जब तकलीफ पहुंचेगी तो उसके असरात ऊपर जाते हैं, पूरी फैमिली में होते हैं, अगर एक फैमिली में एक छोटे से बच्चे को किसी को बुखार तेज हो जाए तो पूरा खानदान जो है वो परेशान हो जाता है, और आप एक मुसलसल हैजान की कैफियत में आपने एक पूरे प्रोविंस के लोगों को रखा हुआ है, तो जाहिर है उसका असर GHQ तक पहुंचना था। जब वो बुरहान इंटरचेंज पर पहुंच गए और बुरहान इंटरचेंज से लेकर डी चौक तक जो PTI के इस जुलूस के साथ और इमरान खान के लोग साथ जो लोग थे उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया पंजाब की हदूद में और इस्लामाबाद की हदूद में, क्या उसके असरात, उसकी रिपोर्टें, उसकी लम्हा बलम्हा रिपोर्ट जो है वो हमारे असास इदारों तक नहीं जा रही थी? बिल्कुल जा रही थी, और वहां जो लोग थे वो आम लोग सड़कों पर निकले हुए थे, और लोग घंटों के हिसाब से वहां रात 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक आम फैमिलीज, और कई लोग सुबह 7 बजे तक वहां मौजूद रहे, पूरी रात कौम पूरी जाती, और वो वहां आंसू गैस की वहां शेलिंग उन पे होती रही, टीयर गैस वो बर्दाश्त करते रहे, रोते रहे लोग और वापस जाते थे, फिर आ जाते थे। तो वो लोगों को साथ जो जुल्म रवा रखा राना सना साहब ने, वो उसके रिपोर्ट हर जगह पहुंची हुई थी। उसका असर ये हुआ जब उन्हें कहा गया कि ये ना करो, इसके बावजूद उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं करना, उन्होंने फिर भी किया, फिर आपने देखा 2-4 दिन बाद जो केस था इनके खिलाफ मंशियात का, उस पर इन्हें दोबारा रिकॉल कर लिया गया, तो इन्हें उसी वक्त पता चल गया था, और वहां जज ने, जो मुतलका जज थे, सिविल जज थे, सेशन जज थे, जो भी थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी कोर्ट थी, या एंटी नारकोटिक्स वाली कोर्ट थी, वहां उन्होंने कहा कि जी राणा सनोला साहब को फलां दिन बुलाएं, हमने उन पर फर्द जुर्म आयद करनी है। अब वो केस कहीं कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था, वो केस दोबारा ताजा हो गया, तो राणा सनोला साहब को एक्चुअली मैसेज पहुंच गया कि जनाब ये आप वजीर दाखला बन गए हैं, और जब आपको कहा जा रहा है कि ये ना करें तो फिर भी आप किए जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। तो एक्चुअली राणा सनाउल्ला साहब को वो दूसरा तरीका नजर आ गया था। राणा सनाउल्ला साहब को नाइस आदमी नहीं है, और राणा सनाउल्ला साहब की तबीयत के ये सख्त खिलाफ है कि वो नर्म बात करें, वो कभी भी उन्होंने ना जिंदगी में नर्म बात की है ना वो कर सकते हैं। ये जो वक्ती तौर पर यू टर्न आपको लग रहा है वो एक्चुअली उन्हें तारे नजर आ गए हैं अपने केस के, और उन्हें नजर आ गया है कि अगर मैं इस तरह सख्ती में करता रहा तो मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए वो ये उनकी टून बदली है। अदरवाइज कोई टून बदलने की कोई अच्छी कोई अच्छी अलामत नहीं है कि राणा साहब से जो है वो यू टर्न उन्होंने लिया है, ये वक्ती तौर पर वो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पब्लिक में वो तो नजर आती है ना। फॉर एग्जाम्पल कल एक सर्वे, नया सर्वे गवर्नमेंट के लोगों ने अपने इन्फ्लुएंस से करवाया है, क्योंकि ये इलेक्शन में जाना है नहीं जाना, उस पर उन्होंने एक सर्वे कराया, और उस सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 32% लोग जो हैं इस वक्त भी PTI को पसंद करते हैं, 27% लोग PMLN को पसंद करते हैं पाकिस्तान में, 10% लोग PPP को पसंद करते हैं, 4% JUI के हक में हैं, 3% तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हैं, और 2% जमात इस्लामी के साथ हैं। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, इसमें अभी भी तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों में टॉप पे जो है वो PTI है, और अगर ये बाकी सारे इकट्ठे मिल भी जाएं, और स्पेशली जब ये सारे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी या TLP तो उनके साथ नहीं मिलेंगी, लेकिन PMLN, PPP और JUI अगर मिल भी जाएं, तो लोगों को ये क्लियर कट मैसेज होगा कि ये सारे मिलके एक को गिराना चाहते हैं, और ये हमारे लोगों का एक जनरल मिजाज है कि जब वो ये समझें कि सारे मिलके उसे गिराना चाहते हैं तो फिर वो उसके साथ हो जाते हैं जिसके अगेंस्ट सारे होते हैं। तो ये जो 32% है ये इंक्रीज हो जाएगा अगर वो सारे उन्होंने इसे इलेक्शन में गिराने की कोशिश की, तो इसलिए ये नंबर्स अब तक आ रहे हैं उसमें इमरान खान अब भी टॉप पे है। अब अगर हमारे हसास इदारे, जिम्मेदार इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज या पाक फौज, GHQ, एस्टेब्लिशमेंट, जो मर्जी है उन्हें कहें,
न्यूट्रल्स
कह लें, वो भी तो देख रहे हैं ना सब कुछ, और वो कैसे हो सकता है कि एक इतना पॉपुलर आदमी जो अब भी इस वक्त इन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बावजूद भी तमाम पार्टियों से ऊपर है उसको वो इग्नोर करें? तो इग्नोर तो वो नहीं कर सकते, इसीलिए इमरान खान को ये कहा गया है कि आप कुछ दिन खामोश होकर बैठ जाएं, हमें ये बजट करवाने दें, क्योंकि बजट जो है एक जिम्मेदारी का काम है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। केयर टेकर गवर्नमेंट तो होती है जस्ट जो रूटीन के मामलात हैं उनको टेक केयर करने के लिए, तो वो इतना बड़ा बजट पेश करना और ये सारी जिम्मेदारी का काम वो नहीं कर सकते। आप हमें बजट पेश करने दें, बजट पेश करने के बाद इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे, केयर टेकर सेटअप भी बन जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए इमरान खान साहब आराम से अब बैठ गए हैं कुछ दिनों के लिए।
नहीं, लेकिन उन्होंने की तो है, कल तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो है वो नेशनल काउंसिल जो थी पीटीआई की, उसके साथ तो मुलाकातें की हैं। उसमें तो उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कह रहा हूं कि भई आप सब लोग मेरे वर्कर्स जो है तैयार रहो, और फिर जो है हम इस दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो रैली निकालेंगे। अच्छा, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अच्छा, पंजाब के अंदर भी फियाज भाई बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। हमजा शरीफ जो है उन्होंने मुलाकातें की हैं आसिफ अली जरदारी साहब से बिलावल हाउस में, तो अब वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो 20 सीटें खाली हो गई हैं पीटीआई की, उनके ऊपर भी हम जो है सीट शेयरिंग के ऊपर करेंगे। तो सीट शेयरिंग पे कैसे करेंगे? पीवीपी जो है उसका तो इतना बड़ा शेयर नहीं है पंजाब में, तो ये तो बड़ा क्लीन स्वीप जो है करने की कोशिश की है जरदारी साहब ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पंजाब में, क्या समझते हैं आप?
जरदारी साहब ने लाहौर गए हैं और उन्होंने वहां अपने घर पे उस पर तलब किया है, चीफ मिनिस्टर साहब को, हमजा शहबाज को अपने घर तलब किया है।
जी, जी,
जो बिलावल हाउस है इनका वहां बैरिया टाउन में, वहां तलब किया और उन्होंने कहा कि हाँ बच्चे बता तू क्या कर रहा है, तू हमारे साथ ये कर रहा है सारा कुछ। उन्होंने सारे अपने वादे उन्हें याद दिलाए हैं और एट द एंड कहा है कि मैं बलोच हूं और बलोच जब जबान दे देता है तो उसके बाद फिर जो है वो अपनी जबान से फिरता नहीं है। मैंने कहा है कि मैं आपका साथ दूंगा तो मैं दूंगा, आप बेशक स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, मैं साथ दूंगा। ये उन्होंने बातें की हैं। इलेक्शन उन्होंने कहा जी कि हम नहीं लड़ना चाहते, आप जितनी 20 के 20 सीटें खाली हुई हैं जिमनी इलेक्शन के लिए आप उसमें अपने कैंडिडेट खड़े करें, हम अपने खड़े नहीं करेंगे, अगर हमारा बंदा कोई खड़ा हो भी गया है तो हम उसे बिठा देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जरदारी साहब बड़े सियाने आदमी हैं, उन्हें पता है कि ये अभी जो इलेक्शन जिमनी पता नहीं हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैं अपने कैंडिडेट्स को अगर 2-4-6 अगर हैं भी, पहले तो उन्हें पता है कि मेरा 10% अगर सर्वे में आ रहे हैं तो वोटर शायद 10% से भी कम हो, तो मेरे अगर कोई बंदे हैं तो वो जीत तो सकते नहीं है, तो मैं अपने बंदों का क्यों इलेक्शन में करोड़ों का खर्चा करा दूं खाम खा में, और अगर वो जीत भी गए तो वो पता नहीं कितने महीना होगा, 2 महीने होगा, 4 महीने होगा। जरदारी साहब पहले तो इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना चाहते और अपने लोगों को कह भी दिया है कि इन्हें पैसे खर्च करने दो, हमें कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा, जरदारी साहब का मसला ये था कि उन्होंने कहा कि बेटा हमारी आपके साथ बात हुई थी कि आप हमारा सीनियर मिनिस्टर बनाएंगे, आपने हसन मुर्तजा को बना दिया, बहुत शुक्रिया। हमारा प्रॉमिस था कि आप लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हमें देंगे, वो आपने अभी तक नहीं दी। आपका हमारे साथ वादा था कि आप CNW जो मवासलात की मिनिस्ट्री है वो देंगे, आपने वो नहीं दी अभी तक। आपका वादा था कि आप प्लानिंग की मिनिस्ट्री देंगे पंजाब में, आपने वो नहीं दी। आपका वादा था कि आप खजाना की मिनिस्ट्री पंजाब में हमें देंगे, आपने वो नहीं दी। तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि ये वादे थे, ये आपने हमें देनी है, और प्लीज अब खामोशी से जाओ और अपने अब्बा जान को बताओ। तो वो उसने बाकायदा उसको डांट डपट के हमजा को वहां से रवाना किया है और बता दिया है कि मैं बलोच हूं और बलोच अपनी जबान से नहीं फिरता, मैं खड़ा हूं, आप ना इधर उधर हो जाना। और उन्होंने कहा है कि 5 मिनिस्टर हमारे बनाने हैं, 2 स्पेशल असिस्टेंट और 2 एडवाइजर बनाने हैं, तो वो बनाएंगे। पंजाब में जो बड़ी डेवलपमेंट पिछकाल हुई है वो मुस्लिम लीग काफ की हुई है, उस पर बात करें।
जी जी, बताएं उसके बारे में।
मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान की तारीख में, मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन जहूर इलाही के बेटे, पहली दफा उनमें बाकायदा फूट पड़ गई है।
Yes,
आप इस वक्त चौधरी शुजात साहब अकेले हो गए हैं। चौधरी वजात जो इनके खानदान में सबसे ज्यादा समझदार आदमी है और सबसे ज्यादा रख रखाव और ताल्लुकात वाला आदमी है वो चौधरी वजात हुसैन है। चौधरी वजात हुसैन और उसका बेटा हुसैन इलाही और मुनस इलाही और परवेज इलाही, इन्होंने ऐलानिया कह दिया है कि हम इमरान खान के साथ हैं और वो बहुत जल्द पीटीआई को ज्वाइन भी कर लेंगे मुनासिब वक्त पे,
जितने जितने भी खोती उतने आंख लोती।
और चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे सालिक हुसैन और शाफे हुसैन, ये मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे और अगला इलेक्शन ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ेंगे, शाफे और सालिक हुसैन। मुनस इलाही, रासिख इलाही, हुसैन इलाही, चौधरी वजात हुसैन, परवेज इलाही, ये सारे पीटीआई के टिकट पे लड़ेंगे या पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। तो शुजात खानदान जहूर इलाही के खानदान में पहली दफा हिस्ट्री में ऑफिशियली ऐलानिया फूट पड़ चुकी है और इसका खमियाजा वो भुगतेंगे आइंदा इलेक्शन में। स्पेशली जो नून लीग के साथ जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आप 3 साल हुकूमत के मजे लूटते रहे, और अब जब इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया तो आप उठ के चले गए। और देखा जाए तो वो दो वोट हैं तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन के, जो अब एक मिनिस्टर और एक एडवाइजर बन के शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उन दो वोटों पे हुकूमत कायम है शहबाज शरीफ की। तो ये उन्होंने इमरान खान की पीठ में जो छुरा घोंपा है, तो वो एक आम वोटर कैसे भूल सकता है। फॉर एग्जाम्पल तलागंग के हल्के में अब अगर चौधरी सालिक हुसैन इलेक्शन लड़ने जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वहां जलसा करना मुश्किल हो जाएगा वहां, क्योंकि वहां हाफिज अम्मार यासर जो MP है लोकल तलागंग का बंदा है, जो इनके बच्चों को कुरान की ट्यूशन पढ़ाता था, उसकी बेस पे वो इनके करीब हुआ और उसने वहां इन्हें परवेज लाई को फर्स्ट टाइम वहां लेके गया तलागंग, वहां से टिकट इलेक्शन लड़ाया, वो इलेक्शन जीता। हाफिज अम्मार यासर बहुत नाइस आदमी है, लोकल आदमी है, तलागंग का है, खुद भी MPA बना, परवेज लाई को भी MNA बनवाया, फिर सालिक हुसैन को MNA बनवाया। वो बंदा परवेज लाई के साथ चला गया है, हाफिज अम्मार यासर। अब तो वहां चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन को हाथ मिलाने वाला कोई नहीं है, तो ये तलागंग से MNA नहीं बन सकते। गुजरात में उनके पास सीट जो है वो मोनिस लाई और परवेज लाई के पास है, तो इन्हें तो हल्का ढूंढना पड़ेगा चौधरी शुजात, सालिक और शाफे को, कि हमने इलेक्शन कहां से लड़ना है आइंदा। तो इनके हालात बहुत खराब होने वाले हैं, इन्होंने बहुत ज्यादती की है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब अपने आखिरी दिनों में, उनके पास जितने दिन हैं वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। फॉर एग्जाम्पल ताजा तरीन आप देखें, अहद चीमा साहब थे एक ब्यूरोक्रेट थे 20वें ग्रेड के। अब 20वें ग्रेड में पंजाब में कितने 20वें ग्रेड के होंगे ऑफिसर? सैकड़ों में होंगे,
बेशुमार, बेशुमार।
और फेडरल में 20वें ग्रेड के कितने होंगे?
बेशुमार,
सैकड़ों होंगे। लेकिन अहद चीमा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि वो से उसने 4 दिन पहले 5 जून को उसने गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से गिला किया कि मैं हुकूमत से नाराज हूं, मेरे खिलाफ केसेस बने, मुझे कोई हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया, मैं ऐसी सर्विस पे, ऐसी हुकूमत पाकिस्तान की सर्विस पे मैं लानत भेजता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, और उसने गुस्से का इजहार किया। तो आज 3 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तीफा कबूल किया और आज उसे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया 8 जून को। 5 जून को उसने शिकवा किया है, क्यों? कि अहद चीमा वो बंदा था जो आशियाना हाउसिंग स्कीम, LDA सिटी स्कैंडल और आमदन से ज्यादा असासों के 3 केसेस नैब में उसके खिलाफ चल रहे हैं।
यस यस।
और आशियाना हाउसिंग स्कीम में मियां शहबाज शरीफ साहब भी हैं और LDA सिटी स्कैंडल फ्रॉड में उसमें भी शहबाज शरीफ साहब का नाम आएगा। शहबाज शरीफ साहब डरते हैं कि अगर अहद चीमा ने जिस तरह उसने खिलाफ हमारे बोलना शुरू किया है, अगर मजीद बोलना शुरू कर दिया और अगर वो PTI के कहीं जाके बैठ गया उनके पास, तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ उसका इस्तीफा ही नहीं कबूल किया 20वें ग्रेड का, बल्कि उसे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी लगा दिया आज। तो जो जो करप्ट बंदा, जिस जिस पे इल्जाम है, जिस जिस पे दाग है, उसको साथ साथ हुकूमत में शामिल किए जा रहे हैं। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में और नैब का एक मुल्जम नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग को चेयर कर रहा है।
ये
पाकिस्तान है। और लोगों को हम बताएं जी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्चुअली वो कमेटी है जो पाकिस्तान भर में जितने भी खुर्द बुर्द के मामलात होते हैं उसकी छानबीन करती है। अब खुर्द बुर्द की छानबीन की जो कमेटी है नेशनल लेवल की हमारी, जिसमें कौमी असेंबली और सेनेट के लोग होते हैं, सबसे आला तरीन कमेटी है खुर्द बुर्द के खिलाफ काम करने के लिए, उसका जो चेयरमैन है वो खुद नैब का मुल्जम है।
अच्छा जी, अच्छा जो है फियाज भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा आखिरी बस क्वेश्चन जो है आज के लिए आपका, बस दिल चाहता है आपसे बातें करते जाएं, आपके पास इतनी अंदर की खबरें होती हैं, एक आखिरी हमें बात बताएं, फूट जो है उसकी तो खबरें बहुत दिनों से ये शरीफ फैमिली की भी आ रही हैं कि मरियम साहिबा और पेज पे हैं, चाचा जो है वो और पेज पे है, ये क्या है ये बताएं जरा, ये आपके पास भी अंदर की स्टोरी है तो बताएं।
मरियम जो है ना वो बिल्कुल सही अपनी लाइन पे जा रही है। मरियम को अपना फ्यूचर, अपनी पॉलिटिक्स, अपना अजीज है, उसे चचा से हमदर्दी बिल्कुल नहीं है। और वो मरियम और मरियम के जितने फॉलोअर हैं, फॉर एग्जांपल शायद खाकान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर और परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी, इनमें से किसी को भी ना कैबिनेट में शामिल किया गया है और अगर उन्हें कहा भी गया है तो वो कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। ये पूरा एक गैंग है मरियम का।
मरियम औरंगजेब इसमें गैंग का पार्ट मरियम औरंगजेब नहीं थी?
नहीं अच्छा, नहीं नहीं, कुछ बंदे मुखबर के तौर पर भी भेजने होते अच्छा। हैं जो हर तरफ की वहां की इनसाइड रिपोर्ट्स भेजते रहे
अच्छा।
तो ये मुखबर जो होते हैं ना, ये मुखबर भी भेजे जाते हैं कुछ, कि वहां की भी इतला मिलते रहे ना सुबह दोपहर शाम के क्या हो रहा है। अगर ये सारे बंदे अपने रोक लेते, एक भी ना भेजते, तो फिर वहां से इतलात कैसे आती? तो इनसाइड रिपोर्टिंग के लिए बंदे भेजे जाते हैं। तो मरियम का वो रोल होगा, वो वहां से अंदर से रिपोर्टें भेजती होगी, कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने से पहले पहले सारी रिपोर्ट मरियम के पास पहुंच जाती होगी कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है, उससे फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी आगे तरतीब देती है। मरियम चाहती है कि फौरन से पहले इलेक्शन हो जाएं, उसके दो रीजन हैं। एक तो ये वो कहती है कि अगर इलेक्शन अभी हो, वो समझती है मैं क्राउड पुलर हूं और वाकई वो क्राउड पुलर है, वो उसने जलसे बहुत अच्छे जलसे किए हैं, जहां जहां किए हैं वो आज भी क्राउड पुलर है, वो उसको समझती है कि मैं इतना क्राउड खींच सकती हूं और मैं इतने इमरान खान पे इल्जाम लगा सकती हूं जैसे भी झूठे सच्चे कि मैं लोगों के एक बड़े ग्रोह को, पाकिस्तानियों को, उनको इस तरफ लेके अपने हक में वोट दिलवा सकती हूं और हम एक अच्छी खासी सीटें MNA की जीत सकते हैं और हम हुकूमत बना सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा लेट हो गया तो शायद हम इस पोजीशन में नहीं होंगे, हमारे खिलाफ केसेस मैच्योर हो जाएंगे तो हम हुकूमत नहीं बना सकेंगे। एक तो उसे ये बात है उसकी और वो उसके अपने तौर पर वो ठीक सोच रही है। दूसरा उसे ये है कि अगर ये हुकूमत थोड़ी सी लंबी हो गई और शहबाज शरीफ ने वाकई कोई शहबाज स्पीड, पंजाब स्पीड दिखा दी यहां और वो प्रूव हो गया कि वो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, तो आइंदा इलेक्शन में अगर मुस्लिम लीग नून जीत भी गई तो फिर मुस्लिम लीग आइंदा शहबाज शरीफ होगा, मैं नहीं बन सकती। अभी उसे पता है इलेक्शन होंगे और हमारे जब MNA बन के आएंगे तो उन MNAs पे कंट्रोल मियां नवाज शरीफ का होगा, शहबाज शरीफ का नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ उन MNAs को जब कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंडिडेट मरियम है, तो वो सारे मियां नवाज शरीफ के साथ ही लबैक कहेंगे और मरियम ही फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो वो अपने तौर पर बिल्कुल ठीक खेल रही है, जो खेल रही है उसके हक में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो इंतहाई कमजोर विकेट पे हैं। और आप कहते हैं इनसाइड खबरें नहीं होती, चीजें सामने की होती हैं, हमारे लोग नोट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अभी हफ्ता पहले शायद अभी 7-8 दिन हुए हैं, लाहौर में जब केस में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पेश हुए तो वो जो मुअज्जज जज साहब थे हमारे, अब उनका मजाक देखें, वो क्या मजाक हो रहा है कि सामने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ सामने खड़े हैं कोर्ट में और कोर्ट अपने जो उनके अदालती मुआवनकार हैं उनसे पूछ रही है कि ये सलमान शहबाज का एड्रेस आपने कौन सा लिखा हुआ था, ये एड्रेस अपना सही पते पे उसे भेजें। उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता ये सलमान शहबाज कहाँ रह रहा है, हमने नोटिस भेजा था, वो नोटिस किसी ने रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा जी अच्छा आप दोबारा तहकीक करें और सही एड्रेस उसका पता करेंगे, ये सलमान शहबाज कहाँ रहता है, और उसको वहां नोटिस भेजें और उसे तलब करें मेरी अदालत में। और शहबाज हमजा साहब और वो दोनों बाप बेटा, हमजा एक सलमान शहबाज का भाई हमजा और सलमान शहबाज का बाप शहबाज शरीफ सामने खड़ा है और वो नहीं बता रहे कि ये हमारा भाई है या मेरा बेटा है और मुझे पता है वो कहाँ रहता है। इन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है, उसके सही एड्रेस पे भेजें, हमें भी नहीं पता वो कहाँ रहता है। अब दो दिन बाद जब वो तुर्की के दौरे पे गए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वहां आपने देखा कि सलमान शहबाज साहब साथ बैठे हुए थे और तैयब एर्दोगान तुर्की के प्रेसिडेंट से मुलाकात जो हो रही है उसमें सलमान शहबाज साहब साथ बैठे हुए हैं
बेगम के साथ, यस,
जिनके बारे में ये है कि उन्हें पता ही नहीं है वो कहाँ रहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को एक मतलूब बंदा है और हुकूमत पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव उसका बाप है, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता कि ये बंदा कहाँ रहता है, इसका एड्रेस क्या है और ये मफरूर है, मतलूब है, भागा हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव उसे साथ लेके एक दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की से तुर्किया के प्रेसिडेंट से उससे मुलाकात करवा रहा है और उसका तारुफ करा रहा है, मीट माई सन सलमान शहबाज एंड हियर इज हिज वाइफ, उनका तारुफ करा रहा है। और जब अदालत में आता है पाकिस्तान में तो वहां कहता है मुझे नहीं पता ये कहाँ रहता है सलमान शहबाज और ये कौन है, ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ। और वहां आपने नोट किया उस तुर्किया के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान से जब मुलाकात हो रही थी तो पीछे एक और बंदा बैठा हुआ था,
जी 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 जी,
हुसैन नवाज, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है,
ब्रिटिश
नेशनल, उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत से ही हैंड्स अप कर दिए हैं, सिर्फ वहां जवाब देना पड़ा था अपनी दौलत का, लेकिन तुर्किया के प्रेसिडेंट से जब मिलना है तो वहां पहुंचना है प्रोटोकॉल लेने, और वहां क्यों कि जब आप किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ होते हैं तो आपका एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है और फिर वहां से ही आपकी बिजनेस डील्स होती हैं, वहां और लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनसे शेक हैंड होता है, आप अपने उनके साथ शोल्डर रब करते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, रबते होते हैं और फिर वहां से और आपके कारोबार की राहें निकलती हैं और कारोबार उसमें जायज नाजायज हर किस्म के कारोबार की राहें निकलती हैं। तो ये कारोबारी खानदान है और यही हमारा अलमिया है कि हमारे पाकिस्तान पे जब से ये कारोबारी खानदान जो है मुसल्लत हुआ है उस वक्त से हमारा मुल्क मुसलसल बतदरीज पीछे से पीछे जाता जा रहा है और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मुझे इन पे कोई एतराज नहीं है, इन्हें सियासत करने का हक है, ये करें, लेकिन खुदा के लिए कारोबार से आप तक डिजाइन कर दें, आप अपनी कारोबार छोड़ दें, क्योंकि जब आप कारोबार भी होगा हुकूमत भी होगी तो फिर सियासत तो नहीं होगी ना, फिर तो आप कारोबार करेंगे।
जैसे यहाँ पे कनाडा में हुआ था, बिल मॉर्नियो को कहा था कि आपको अपने बिजनेसेस से पीछे हटना पड़ेगा नाउ दैट यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना।
सबको करना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है।
यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है फियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर से आपके साथ एक या दो दिन में फिर से जुड़ेंगे। बहुत जबरदस्त, ये बातें हमें और कोई नहीं बता सकता, सिर्फ फियाज भाई आप ही बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनसाइट, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। और हमारे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फियाज भाई मुझे इस वक्त आपके लिए, और वो कह रहे हैं जी वाओ अमेजिंग गुड जॉब प्लीज ब्रिंग हिम बैक, इतने सारे ये मैसेजेस आए हुए हैं। तो अब हमारा आपको दुनिया बड़ी पसंद यहाँ पे करती है, हम आपको फिर से भी लाएंगे, बट आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं, तो विल कनेक्ट विद यू सून इंशाल्लाह।
नो प्रॉब्लम, पसंद करने वालों का शुक्रिया, और ना पसंद करने वालों से मेरी अर्ज है कि प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करें और सुनते रहा करें हमारा प्रोग्राम, आपके हक में भी और आपकी दिल की बातें भी मैं करूंगा। आप बिल्कुल फिक्रमंद रहे, इमरान खान को, इमरान खान भी जहां जहां गलती करेगा मैं उसकी इसी तरह क्लास लूंगा जिस तरह अभी शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी देर पहले हमने ली है।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
ओके ठीक,
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या ये पावर हाउस है भाई, ये इनके पास क्या स्टोरी है, क्या क्या स्टोरी है, क्या बात है, अमेजिंग
जो है वो जो वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट,
ओ हो
पाकिस्तान में नहीं, यहां कनाडा में भी जो है वो सहाफत से जुड़े रहे हैं, और वेरी नाइस,
वेरी नाइस। और लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि यहाँ पे इतने अरसे से आए हुए हैं और अभी तक इनके पास ना सारी अंदर की स्टोरियां वहां की होती हैं, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है भाई, बताए आप।
इन्होंने भी वहां जो है वो मरियम औरंगजेब छोड़ी हुई है ना, आप देख
लीजिएगा,
क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई ना कोई बंदा छोड़ना पड़ता है,
छोड़ना पड़ता है,
इन्होंने भी जो है ना मुझे लगता है कि कोई ना कोई
हमें, आज तो तुमने ये बड़ी पते की बात हमें
छोड़ा हुआ
है, छोड़ा हुआ है, ऑफिस पूछोगे जी कौन छोड़े हैं पीछे, दोस्तों
100%
बिल्कुल ये पूछेंगे। अच्छा जी, हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं आमिर
जी, दो कमर्शियल ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा कुछ तफसील है वो इंटरव्यू हमारा, हम 9 बजे तक आप हमारे साथ हैं, और एज यूजुअल 8 बजे के बाद से जो है वो 9 बजे तक जो है वो जो शाहजा जी ने खबरें दी हैं वो रिपीट होंगी। इसके अलावा एक स्पेशल इंटरव्यू जो है वो आप
7
इंटरव्यू जो है वो आप जो है वो सुन सकेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम इतना है कि हम 35 तक तो है, 40 पर जो है वो आप जो है 7:40 से 8 बजे तक जो है ये इंटरव्यू आपके लिए पेश किया, और वो इंटरव्यू किसका ये शाजी जी आप बताएं, वो इंटरव्यू किसका है?
जी अच्छा, ये हमने आपको कल भी बताया था थोड़ा सा, और हम आपको फिर से बता रहे हैं, खालिद अल मायना साहब यहाँ पे आए हुए हैं, आपको पता ही है बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये एडिटर इन चीफ रहे हैं सऊदी गजट और अरब न्यूज के सऊदी अरेबिया में, सऊदी है बेसिकली, ही इज अ सऊदी, और बड़े ही इन्फ्लुएंशियल थे अपने जमाने में, और वो जिसको कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वॉज On someone's fingertips, बिल्कुल the world was on his fingertips, बड़े ये senior और बड़े, लेकिन सबसे इसमें जो अच्छी बात ये थी हमारे लिए, जाहिर है हमारे perspective से, कि एक तो ये कराची यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, कराची में पढ़ते थे, पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत loud voice रहे हैं ये मिडल ईस्ट के अंदर, और मैंने तो खुद इनके जो हैं बहुत सारे लेक्चर्स दुबई के अंदर और जगहों पे मैंने अटेंड किए हैं, जहाँ पे कि बड़ा इनसे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चंस पाकिस्तान के बारे में पूछे जाते थे, और ये बहुत ही प्यार से उसको जो है उस बंदे की तबीयत साफ करते थे और बताते थे कि पाकिस्तान के स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और उसके आज भी जो ये इंटरव्यू आप देखेंगे खालिद अल मायना साहब के साथ जो हमने एक्सक्लूसिवली लिया 770 के लिए, उसमें वो अगेन आप देखेंगे बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान की वीकनेसेस किधर हैं, स्ट्रेंथ्स किधर हैं, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इंडिया के साथ कैसे होने चाहिए, रीजनल जो अब सिचुएशन है वो कैसी बनती जा रही है। तो वो हमने सारी जो उनके साथ बात की है वो हम आपके साथ जो हैं, खासतौर पे लोग बहुत सारे कंसर्न हैं कि पाक सऊदी रिलेशंस कैसे हैं, तो उसके ऊपर कश्मीर के मुद्दे पे ये जो अभी गुस्ताखियां हुई हैं उस सिलसिले में बहुत सारी उन्होंने बातें की, रीजनल जो दोस्तियां हैं मुसलमानों के बीच में वो कैसी होनी चाहिए, किस बेसिस पे होनी चाहिए, उस पर हमने बात की है। तो ये इंटरव्यू जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव आप अभी थोड़ी देर में खालिद अल मायना साहब के साथ देख सकेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी।
और सबसे बड़ी बात है आमिर, ये
मैं बोलने वाला नहीं, ये मेरा, ये मेरा डायलॉग है,
ये इंटरव्यू जो
आप घबराए नहीं, इन्होंने कहा ना कि अरब से आया हुआ, तो आधे तो ये सोच रहे होंगे भाई यार अरबी समझ कहां से आएगी,
ना अरबी में है ना इंग्लिश में है,
है।
हाँ, ये क्या है किसमें,
ये सरप्राइज ये है कि वाहिद हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जिनको शाजी जी कह रही है कि वो अरब से हैं, तो एक ذہن میں آتا ہے
سعودی عربیہ
سعودی عربیہ سے ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے یار انگریزی عرب ہے انگریزی بولے گا یا تو عربی بولے گا لیکن جناب یہ انٹرویو آپ نے مس نہیں کرنا لینگویج آپ کو نا 7:40 بتاؤں گا یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے یہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے نا جڑے رہنا یہ نہیں کہ آپ نے دیکھتے ہی جو ہے چلو جی اب تو عربی میں ہوگا مزہ نہیں آئے گا کیا
کیونکہ مجھے تو جرمن لینگویج بھی آتی ہے
ہاں مطلب لیکن آپ نے جو ہے وہ جڑے رہنا اس انٹرویو کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد یعنی کچھ کمرشل ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ورنہ ہم فائر ہو جائیں گے یقین کریں بہت سننی پڑتی ہے آپ کو پتا ہے نا یہ کمرشلز ہی چلتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سارا جو ایک گلدستہ بنا ہوا ہے 770 کا اور یہ آواز ٹی وی کا یہ سارے ہمارے جو اسپانسرز ہیں انہیں کی بدولت جو ہے یہ سب چیزیں چلتی ہیں تو آپ نے لوکل اسپانسرز کو ہمارے تمام ان کو بہت سپورٹ کرنا ہے ہماری eawaz.com پر ضرور جانا ہے ہمارے فیس بک پیج کو لائک ضرور کرنا ہے فالو کرنا ہے اس طرح ہمارا eawaz کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اس کو جو ہے وہ ضرور فالو کرنا ہے شجا جی آپ کا بہت بہت شکریہ
تھینک یو عامر آئل سی یو ٹمارو
انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ابھی اس نشست کو ہم برخاست کرتے ہیں انٹرویو عربی اور انگلش یہ آپ دیکھیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے اجازت دیجیے السلام علیکم
اب مارگیج لینا اور بھی آسان سینٹرم فیوچر مارگیج گروپ کے کاکب جاوید کو کال کریں پرائیویٹ مارگیج فار اینی پرپزز کمرشل مارگیج انڈسٹریل مارگیج فارم اینڈ ہابی فارم ویری کمپیریبل ریٹس فار فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارگیج نیو کمرز ٹو کینیڈا فرسٹ ٹائم بائرز سیلف امپلائڈ refinancing, debt consolidation, assist in real estate. He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, mortgage agent, 416-454-6065.
اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے رابطہ کیجیے آپ کی اپنی ڈاکٹر نازیہ رحمان لیزر ٹوتھ وائٹنگ روٹ کینال ٹریٹمنٹ ڈینٹل امپلانٹس
فری ڈینٹل ٹریٹمنٹ فار کڈس ہیلتھی اسمائلز انٹیریو کے تحت ڈینٹسٹری آن مسز ساگا 65 مونٹپیلیئر اسٹریٹ یونٹ 104 مسز ساگا روڈ اینڈ فائنینشیل ڈرائیو
کال کیجیے ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100 کنسلٹیشن ایبسولوٹلی فار فری ڈینٹسٹری آن مسز ساگا
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
परिवार ही सब कुछ है दुनिया भर में अब उनके साथ जुड़ना थोड़ा आसान हो गया है अब जब आप CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर भेजते हैं तो विदेश में आपके प्यारे इसे उसी दिन अपने पास की मनीग्राम लोकेशन से नकद में ले सकते हैं और ये सब बिना किसी ट्रांसफर फी के ताकि आप अपने प्यारों को भेज सकें और ज्यादा उनकी मदद करने का यही सही तरीका है CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ परिवार कभी भी दूर नहीं शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू हैं CIBC.com/cashpickup पर जाएं
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ ڈسیبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے اگر نہیں تو سن لائف کی پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا 416-894-5872
جی ہاں صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں
ٹرسٹ وردی آنیسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف 416-894-5872
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ پی آر رینوولز اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں آپ مجھ سے 905-513-0012 پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا canimsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہمارے آفس میں سرٹیفائیڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں
انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج میں نئے تعلیمی سال کے لیے فل ٹائم ہیوز اور سنڈے اسکول کے لیے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج ریجن کے ٹاپ ریٹڈ ایلیمنٹری اسکولوں میں سے ایک ہے، جہاں اونٹیریو سلیبس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جس میں اسلامک اسٹڈیز، عربی اور قرآن شامل ہیں۔ انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج میں بلینڈڈ کریکولم، کوالیفائڈ اسٹاف، اسمارٹ ٹیکنالوجیز، جمنیزیم، لائبریری، سائنس لیب جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ ایڈمیشن کے لیے ابھی کال کیجیے 519-740-6855
جی ناظرین، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی کے ساتھ، خالد المائنہ صاحب، ایڈیٹر ان چیف رہے ہیں عرب نیوز کے ساتھ سعودی عربیہ میں، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ بہت بڑی آواز رہے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ یہ پاکستان کے لیے ہماری بالکل خوش قسمتی ہے کہ آج یہ یہاں پہ ٹورنٹو میں ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس۔
تھینک یو آلسو، آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر۔
اچھا خالد صاحب، یہ جو ابھی جیو پولیٹیکل سچویشن ساری مڈل ایسٹرن ریجن میں چل رہی ہے اور مسلمانوں کے بیچ میں بہت سارے رفٹس بھی ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ، اور کیسے آپ سوچتے ہیں تمام مسلمانوں کو اپنے سارے ڈفرینسز بھول کے، جیسے کہ اقبال کو بھی آپ نے پڑھا، آپ کافی کوٹ بھی کرتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحر سے لے کے تابخا کے کاشگر، تو کیسے مسلم ورلڈ کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈفرینسز بھول جائیں؟
میرے خیال میں سب سے پہلے جو جذبات ہیں مسلمانوں کے پاپولیشن کے بٹوین، اس جذبات کو آپ ٹرانسلیٹ کرے، فوکس کرے آپ اکنامک ایشوز پر، سوشل ایشوز پر، جوائنٹ تھریٹس جو آ رہے ہیں مسلم ورلڈ میں، جو جوائنٹ تھریٹس چھوڑ دیں آپ سیاسی تھریٹس کو، آپ فوکس کرے ڈیزرٹیفیکیشن یا انوائرمنٹ، پانی، لیک آف واٹر، پھر فوڈ شارٹیج، فوڈ سپلائی، فوڈ سیکیورٹی، اگر اس چیزوں پر ہم فوکس کریں تو آٹومیٹکلی دس ول انہینس آر کوآپریشن۔ دوسری بات، ہم اب رات دن شور مچاتے ہیں کولونیل رول نے ہم کو ڈیوائڈ کیا ہے، وی شوڈ فارگیٹ اٹ۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سامنے دیکھیں گے، پریپیئرڈ گولز، جوائنٹ گولز، اور اچھی میڈیا، وی شوڈ ناٹ الاؤ کہ ہمارے میڈیا ایک دوسروں کو گالی دیں۔
اچھا سر، ہمارے پاکستان کے ویسے تو بہت ہی قریبی اسٹریٹجک الائنس ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، لیکن یہ میڈیا میں کچھ خبریں آئی تھیں، لیکن بیکاز یو آر ویری کلوز ٹو دا سعودی رجیم ایز ویل، تو اس میں آپ ہمیں ذرا صحیح پکچر بتائیے کہ جس وقت یہ ایک نیوز آئی کہ سعودی عربیہ نے شاید ہیلپ مانگی تھی یمن کے اوپر، تو اس کے اوپر کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، یا کہ ابھی جیسے کہ گئے ہوئے تھے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، تو ملے تھے پرنس سلمان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ایڈ سے زیادہ آپ کو اپنے فارمز کے اوپر اب زیادہ زور دینا چاہیے، تو ان ساری چیزیں یہ جو میڈیا میں آتی ہیں ان کے اوپر آپ کی نظر کیسے ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟
میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ سب یہ غلط ہے، پارٹ آف اٹ کڈ بی ٹرو، لیکن دی مین تھنگ از دیٹ پاکستان کو ہم اس طریقے سے دیکھنے چاہتے ہیں، ناٹ کمنگ وتھ جسٹ آسکنگ فار ایڈ، خود اپنے انہینسمنٹ کریں، خود جا کے اپنے اکنامک ریفارمز اسٹرکچر کریں۔ ایز فار ایز The other issues are concerned, non-interference is there. Lekin hum ye chahte hain ki Pakistan to get its own act, to get its own house in order. Ek ye cheez hai. Aapne ye bhi suna hoga ki Saudi Arab asked for the money to come back. To ye sab galat cheeze hain. Aur unfortunately, kaafi jo loose talk hai, it is causing more harm. Aur ek party dusri party ko kaatne chahti hai. To is liye wo log is taraf is qisam ke statements nikalte hain.
اچھا سر، ابھی ریسنٹلی جیسے کہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بی جے پی کے جو دو ممبرز ہیں، ایک تو نوین جندال ہیں اور دوسری وہ جو بی جے پی کی صاحبہ ہیں نوپور شرما، ان کے بہت ہی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط قسم کے بیان آئے تھے، اور سعودی گورنمنٹ نے لائک ادر مسلم ورلڈ بہت سخت بیان دیے، اور او آئی سی کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی، لیکن قطر نے تو یہاں تک کہا کہ ہم ان کے ساتھ بوائیکاٹ ان کی پروڈکٹس کا کریں گے، سعودی کی طرف سے
وی انڈرسٹینڈ کہ ان کے کمرشل انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں سارے کنٹریز کے انڈیا کے ساتھ، لیکن اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا، لیکن بہت اسٹرانگلی تو کنڈیم کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نیکسٹ اسٹیپ میں سعودی عربیہ کچھ اور زیادہ سختی سے انڈیا کے ساتھ پیش آ سکتا ہے؟ بیکاز وی ہیو سین کہ پرنس جو سلمان ہیں وہ جا کے انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹس کی ہیں انڈیا میں، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان انویسٹمنٹس کے اوپر کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا کہ کیا؟
انڈیا آپ کو ویدر وی لائک اٹ ناٹ از ریجنل اکنامک پاور، یہ ہے، لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ اگر وہ ریجنل اکنامک پاور ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے اور یہ دو عورتیں جو ہیں دے شوڈ بی پنشڈ، دا انڈینز شوڈ اپولوجائز.
ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، ایک جندال صاحب ہیں اور ایک کنوپر شرما ہیں،
دونوں، ایک اور بھی ہے، ایک بی جے پی کا ینگ بی جے پی ممبرز، وہ بھی اس نے غلط بات کیا ہے،
نرسم آنند
اور دیر آر تھری اور فور، یہ چاہتے ہیں ہمیں پرووک کرنے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام جو ہے کویت میں، گلف کنٹریز میں، انہوں نے انڈین پروڈکٹس کو روک دیا، اینڈ دس از دا بیسٹ آنسر ٹو دیم، یو سی دس از ویری امپورٹنٹ. گورنمنٹس ہیو آلریڈی سینٹ بہائنڈ دا سین لیٹرز بھیجے ہیں اوپنلی، انہوں نے دے ہیو کنڈیم دس، بٹ عوام اگر کوشش کریں کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جب تک وہ باز آئیں گے، آئی تھنک دیٹ از مچ مور فروٹفل اینڈ افیکٹو.
اچھا، یہاں پہ جو ہیں خالد صاحب، اس ریجن کے اندر دو بہت بڑے پاور سیٹ اپس نظر آ رہے ہیں، ایک انڈیا نظر آ رہا ہے، ایک چائنا نظر آ رہا ہے. ویسٹ جو ہے کانسٹنٹلی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور چائنا کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں بیلنس آف پاور جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے؟
آف کورس، یعنی جیسے ہی ویسٹ نے، آپ نے دیکھا کہ یوکرین میں ان کو انکریج کیا اور یوکرینینز میں جو کیا ہو رہا ہے، بس آئی تھنک چائنا از ویری اسٹرانگ. دا ڈفرنس بٹوین چائنا اور انڈیا میں تو کافی آل نان سینس، دیر مور فوکسڈ کہ کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بینڈ کر رہے ہیں لاؤڈ اسپیکرز اینڈ آل دس کائنڈ آف تھنگ. چائنا از پروگریسنگ ویری ہارڈ، اور چائنا کی عزت ورلڈ اسٹیج میں انڈیا سے زیادہ ہے. And I don't want to demean India, لیکن زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا ڈیموکریسی اور ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی آل کائنڈ آف ایکسپریشنز کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک بیلنس آف پاور ول اسٹل ریمین وتھ چائنا. کیونکہ آپ بھول گئے دوسرے کنٹریز لائک کیمبوڈیا، لائک ویتنام، نارتھ کوریا، ادرز آر آلسو ان دا ایریا اینڈ دے آر نیوٹرل، دے ول ناٹ فال فلیٹ with these people. Even the Arab world, kitna pressure I'm sure behind the scenes on the Arab world to do away with China. Sorry, China is a strong country, Asian country hai, aur unke sath hamare relations achhi honi chahiye, and we should not be used as pawns, the Arab world, by anyone.
اچھا مینا صاحب، آپ کا بہت، آپ کی نظر ہے اور آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں. یہ جو ابھی پولیٹیکل چینج آئی پاکستان میں، اس میں کچھ ایسی بھی میڈیا میں خبریں آئی تھیں، بیکاز سعودی گورنمنٹ از ویری کلوز ٹو دا یو ایس، تو شاید سعودی گورنمنٹ نے کچھ میسج، شاید ہم کو لگتا ہے کہ الیجلی شاید انہوں نے کہا کہ کوئی آپ میسج دیں ان کو، پاکستان کو، ایسی کوئی بات آئی تھی آپ کی نظر میں؟
No, I don't think so. میں بہت افواہ سنتا ہوں، I listen to a lot of these things, but believe me, the Saudis are very careful. جو بھی ہو، علی ہو یا سعید ہو یا حسن ہو، as in charge of Pakistan, we deal with them. کہ ہماری ریلیشن شپ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، پرماننٹ ریلیشن شپ ہے، اینڈ دے نیور انٹرفیئر. آپ نے خود دیکھا جب نواز شریف صاحب گئے اور مشرف آئے تو مشرف کے ساتھ اس کے پہلے، سو اٹ گوز آن. سو دی ریلیشن شپ جو ہے میرے خیال میں از بیسڈ آن سالڈ راک پرنسپلز، یعنی وی ڈونٹ نو واٹ گوز آن بیہائنڈ، لیکن ہم سنتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں بھی. دس از انٹر پارٹی، اور انٹر پارٹی فائٹس جو ہوتے ہیں پاکستان میں وہ سعودی عرب کو ڈریگ کرتے ہیں اس میں.
اچھا خالد صاحب، ایک اور جو بہت بڑا پرابلم پاکستان میں سمجھا جاتا ہے وہ مدرسے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید عرب ورلڈ سے بہت زیادہ اس کو فنڈنگ آتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت عرصے ایز ایڈیٹر ان چیف ون آف دا بگیسٹ نیوز پیپرز ان مڈل ایسٹ میں آپ نے گزارا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مدرسے کا کلچر اور یہ جو سارا فنڈنگ پاکستان میں آ گئی ہے، اس سے فنیٹسزم جو بڑھ گئی ہے، تو کیا اس فنڈنگ کو اب روکنے کا وقت نہیں آ گیا؟
بلیو میں، یہ فنڈنگ میرے خیال میں 20 سال سے بند ہوا، یہ فنڈنگ شروع ہوا یا طالبان، بیکاز یہ لوگ یتیم یا وٹ یو کال آرفنس تھے، سو اٹ یوز ٹو گو آئی نو مائی سیلف افغان وار میں لوگ جاتے تھے افغان ریفیوجیز کے ہاسپٹلس کھولتے تھے, یہ کھولتے تھے وہ کھولتے تھے. بس یہ فنڈنگ, بلیو می دس از این اینٹیکویٹڈ اسٹیٹمنٹ بائی دیز پیپل. اور دوسری بات, یہاں جب عرب ورلڈ ہیز گون اہیڈ, اب یہ پاکستان بولتے ارے آپ لوگ نے آ کے یہ یو ہیو یو نو انسٹیگیٹڈ دس اینڈ یو ہیو گرون دس, تب وی ہیو گرون دس, وی ہیو گون اہیڈ. تو میرے خیال میں یو شوڈ ناٹ بلیو. اور ایون ویسٹرن میڈیا میں آج کل یہ مدرسوں کی فنڈنگ کے بارے آج کل ویری لٹل فوکس از دیئر.
اچھا سر, آپ جو گوئنگ فارورڈ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ عرب ورلڈ بہت آگے چلا گیا ہے, تو گوئنگ فارورڈ آپ پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشن شپس کیسے دیکھتے ہیں, اینڈ ان دا بگر مڈل ایسٹرن کانٹیکسٹ آپ سعودی کا کیا رول دیکھتے ہیں مسلم ورلڈ کے اندر؟
آئی تھنک سعودی کا جو رول ہوگا ان دا فیو ایئرز ایز اے اسٹیبلائزر, وی ہوپ کہ ریجنل پالیٹکس اور ریجنل پیٹی پالیٹکس میں اس پر قابو ہو جائے. دیر ول بی ریلیشن شپ, یمن وار ول بی اینڈنگ, ادر تھنگز آر ہیپننگ, سیریا میں دیر آر سائنز. لیکن آپ کوئی کنٹری کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ انٹرنلی ویدر یمن اور سیریا, خود عوام شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ دین دا ادرس کین کم ان. یہ از ویری امپورٹنٹ. اگر میں عرب لیگ کا سیکرٹری جنرل ہوتا, مائی فرسٹ پرائیورٹی از ٹو گو اراؤنڈ دا عرب ورلڈ, دیکھوں گا واٹ آر دا پوائنٹس آف انٹرسٹ, کامن پوائنٹس, اینڈ دین جو ادر تھنگس دے آر ریالٹی, آپ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ, اس کو پھر ہم اس کو سالو کریں گے. بٹ آئی تھنک سعودی عرب ہیز گوٹ اے مور پرو ایکٹیو پالیسی دین بیفور. لوگ سمجھتے تھے کہ وی ڈو ایوری تھنگ واٹ امیریکا سیز, آپ نے خود دیکھا کہ آئل پرائز یہ وہ ادرز, and we have come of age.
And Saudi Pak relations, Saudi, going forward,
Saudi Pak relations will continue to go forward. I urge ki main chahta hu ki Pakistani log economic platform, economic projects ko present kare, so that the Saudis can invest there. Ye is very important. Lekin aap dekhte hain ki sab wo Saudi se, Pakistan se negative reports aate hain, and itna focus, یہ الیکشن ریموول, نو کانفیڈینس, وی نیڈ ٹو سی سم اکنامک نیوز کمنگ آؤٹ آف دیٹ. ہب ریور پروجیکٹ ہو, یہ ہو, ویٹ. اب پاکستان کا بڑا فرصت ہے پاکستان کی, کہ اف دے ول ڈو ویٹ فارمنگ, آپ کے ایرڈ لینڈ ہے, پانی بھی لا سکتے ہیں. دیز کائنڈ آف ایشوز, بیکاز ناؤ یوکرین کانفلکٹ نے آپ نے بتا دیا کو کہ شارٹیج آف فوڈ ان دا عرب ورلڈ, تو پاکستان کین بیکم اے بریڈ باسکٹ آلسو.
اچھا خالد صاحب, ایک اور جو بہت ہاٹ ایشو یہاں پہ جو ہمیشہ جو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کو بہت ہوا بھی شاید دی جاتی ہے, اتنا مسئلہ ہے نہیں لیکن شاید اس کو, سعودی عربیہ اور ایران کے جو ریلیشن شپس ہیں ان میں کیا چیز ان کو ہینڈر کر رہی ہے؟ حالانکہ ہم نے بھی ریسنٹلی تو سنا ہے کہ پرنس سلمان نے کافی کوشش کی ہے کہ ایران کے ساتھ بھی اچھے کیے جائے. ایران کی طرف سے بھی آئی تھی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہم اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں. یہ دو کنٹریز جو ہیں ان کے انٹرسٹ کیوں اپوزنگ پولز کے اوپر ہیں, اور یہ دو بہت بڑے پاورز ہیں, تو یہ ریجن کے اندر سعودی عربیہ بھی آئل پاور ہے, ایران بھی ہے, تو یہ ایک پیج پہ نہیں آتے, اس کی وجہ سے کنٹریز لائک پاکستان دین یو نو دے ہیو ٹو چوز اے سائڈ. تو یہ کیچ 20 سچویشن جو ہے کہ کس کے ساتھ دیں, یہ کب ختم ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے؟
میرے خیال میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, ٹو ٹریک ڈپلومسی. لیکن آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز این اینالسٹ ناٹ ایز اے سعودی. انفارچونیٹلی یعنی جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ فارن منسٹر سے کچھ اسٹیٹمنٹ آتا ہے پازیٹو, ایرانین سے یا ادھر سے, لیکن آپ جانتے ہیں وہ جو کلرجی, یہ گارڈز, ریپبلکن گارڈز کے کمانڈر ان چیف, ہو ہیو نو رائٹ ٹو انٹرفیئر, الٹی سیدھی باتیں کہ ہم 4 عرب کیپٹلس کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. آئی تھنک دس از دا مین تھنگ. کنگ عبداللہ میڈ این ایفرٹ ان ہز ٹائم, اور یہاں بھی اسٹیٹمنٹس اگر دیکھیں گے کنسیلیٹری اسٹیٹمنٹس ہیں کراؤن پرنس سلمان کے, اینڈ پیپل وانٹ پیس, نو بڈی وانٹ ٹو اینٹیگنائز. بٹ صاف صاف میں آپ کو کہتا ہوں, سرٹن ایلیمنٹس ان ایران, دے ڈونٹ وانٹ دس unfortunately. اور اگر ایرانی گورنمنٹ ان پر قابو کرے, اینڈ دے ٹرائی ٹو ہولڈ دیم اینڈ سی ٹو اٹ, دین آئی تھنک دے کین بی پیس. بٹ انٹرفیئرنس, یہ اسکٹس جو آ رہے ہیں, ایوری بڈی نوز یمنیز کینٹ میک اسکٹس. تو سمجھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ سینر ایلیمنٹس ول پریویل ان ایران آلسو.
سر, ایک بس لاسٹ کوسچن آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیکاز آپ اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے تو وہ ہمیں سارے اپنے جو غم بھی ہیں وہ بھی یاد آ جاتے ہیں. انڈیا پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ کیوں ان کے اندر ڈسکمفرٹ آ جاتا ہے, ڈسٹرسٹ آ جاتا ہے, ایک بم دھماکہ ہوتا ہے اور سارا کچھ ڈیریل کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی سینٹی دونوں طرف پریویل کرنی پڑے گی کہ یہ ریلیشن شپس چلتے رہیں, ٹریڈ چلتی رہی, نو میٹر کیا ہو جاتا ہے؟
یہ ایکسٹرا لگیج جو ہے اٹس بیک گراؤنڈ آف دی پارٹیشن. کافی لوگ انڈیا میں دے ڈونٹ ایکسپٹ پارٹیشن. میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں, کافی آئی میٹ دیز اینالسٹ اینڈ آل, دے ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی ون. وہ تو ابھی چاہتے ہیں الحمد للہ یہ لوگ چلے گئے چلے گئے بیکاز آف دی سی. بٹ میرے خیال میں یہ ہیٹریڈ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہیٹریڈ آف مسلمس کے یہ لوگ نے ہمیں فار ایئرز دے ڈومینیٹڈ اس, دے ڈیوائڈیڈ آر کنٹری, یہ مینٹیلٹی اب تک ہے ان سرٹن سیگمنٹس آف دا انڈین انٹلیکچوئل سوسائٹی. یہ پاکستان سائڈ میں بھی صاحب یہ آپ جانتے ہیں کہ دی سو کالڈ ریلیجیس ایلیمنٹس کہ ہم کو بتا دیں گے اسلام خطرے میں ہے, اسلام از ان ڈینجر. یہ سو انلیس دیر آر کانفیڈینس بلڈنگ میجرز جیسے میں نے کہا عربوں میں بھی, تو دے شوڈ کم اینڈ سٹ اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر. اور آپ دیکھیے ٹریڈ انٹر ٹریڈ بارڈر کو کھولیں, ہاؤ مچ اٹ ول بینیفٹ آف دیز پیپل. ہاؤ آپ کا کیا دشمن ہے؟ انڈیا میں بھوک, پانی نہیں ہے, بیماری, الٹریسی. سیم تھنگ آپ پاکستان اگر آپ ڈان پڑھیں گے یا ٹائمز آف انڈیا, دا سیم تھنگس, ڈیکوئٹس, براؤن آؤٹس, سو اٹس دا سیم تھنگ. بٹ دا پرابلم از دیس پولیٹیکل انہنجنگ بائی سم آف دا پیپل دیٹ کریٹس اے لاٹ آف پرابلمز. اور آج کل تو ہندوستان میں آپ پاکستان کا نام نہیں لا سکتے ہیں. اینڈ دس از آئی فالٹ دا انڈینز مور, 70% فالٹ ان پر آتی ہے کہ کیوں دی از اے بگر کنٹری, ان کے پاور زیادہ ہے. اگر اپنے طرف سے وہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں. اف دا لائٹس گو آؤٹ ان دہلی تو وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں. اگر انڈیا ہار گئے اگینسٹ آسٹریلیا وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان, یو نو دس, دیز آر دا تھنگز دیٹ آر ہارڈ ریالٹیز.
اچھا آپ کے بس لاسٹ تھاٹس بتائیں فار یونائٹنگ آل دا مسلمز آن ون پلیٹ فارم ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ فورس اگینسٹ آل دیز پیپل جو کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جہادسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ جو اسٹیریو ٹائپس آ گئے ہیں مسلمانوں کے لیے, اس کے لیے آپ ایک ریسیپی آف سکسیس مسلمانوں کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟
ایک چیز میں آپ کے کوشچن واپس جاؤں گا کہ یہ جو ہے دے آر فیڈنگ اوے. صاف صاف بتاؤں گا, نہیں ہے ISIS کوئی نہیں پوچھ رہا ہے, القاعدہ نو بڑی از آنسرنگ. آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں RSS آر کمنگ اپ. آئی تھنک ایک ریسیپی ہے گڈ ایجوکیشن, گڈ اکانومی, اور اپنے پلانس کو آپ سب کو بتائیں. اینڈ دس از امپورٹنٹ, پارٹیسپیشن آف ایوری سٹیزن ان دا لوکل باڈیز ان دا ڈیسیشن میکنگ پروسیس. تو آپ ان کو چانس نہیں دیں گے یہ ایکسٹریمسٹ کو ٹو پرے آن دا مائنڈز آف دیز ینگ پیپل. میرے خیال میں یہ ٹھیک سے ہوگا. تو آئی تھنک آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کیوں, جیسے سعودی عرب میں ہوا ہے, یعنی ریفارمز جو ہیں کس نے کچھ نہیں بولا بیکاز دے وار فالس ایکسٹریمسٹ, سب چلے گئے ایجپٹ میں ادھر ادھر. سو ایک لفظ میں پارٹیسپیشن.
تو تھینک یو ویری مچ خالد صاحب, اٹ واز این ایبسولیوٹ پلیزر. اور ہمارے جو ہیں دیکھنے اور سننے والوں کو بھی پتا چلا ہوگا کہ آپ بینگ اے سعودی کتنی بیوٹیفل اردو آپ بولتے ہیں. تو اٹس این ایبسولیوٹ یو نو این لائٹنگ ایکسپیرئنس سٹنگ نیکسٹ ٹو یو. اور ہم سوچتے ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے اسٹیشن پہ بھی 770 پہ ضرور تشریف لائیں گے اور ہماری جو سننے والی جنتا ہے اس کو آپ ضرور انلائٹن کریں گے اسی طرح.
ان شاء اللہ. اور میری اردو تو ٹوٹی پوٹی اردو ہے, بٹ اینی وے آئی ول کم ٹو یو ان اے کپل آف منتھس مائی سیلف.
یس, تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ کامنٹس.
تھینک یو, خدا حافظ.
تو ناظرین یہ تھے ہمارا بہت ہی آج کا اسپیشل سیگمنٹ جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر, لیومینری, ایڈیٹر ان چیف جو ہیں خالد المائنہ صاحب, ان کے ساتھ تھا. وی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. جیسے کہ خالد صاحب نے کہا ہے کہ کچھ مہینوں میں وہ پھر ہمارے پاس آئیں گے اور اس دفعہ ہمارے اسٹیشن پہ آئیں گے تو پھر دل کی باتیں کریں گے. ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور بہت سی باتیں ان سے کریں گے اور آپ سے بھی کروائیں گے. اینڈ فار ناؤ بائے بائے.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
हर किसी टीम फॉर एंटरटेनमेंट एंड ट्रस्ट 99 लॉजिस्टिक्स प्रेजेंट अरिजीत सिंह लाइव इन कॉन्सर्ट Saturday, June 11th at the First Ontario Centre, Hamilton. In association with Trans Expert, Autobahn, Roadlink, RPD24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit Ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment presents Arijit Singh Live in Concert.
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में खबर हार आफताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401